ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हरे कृष्णा। तो आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूँ प्रातकालीन इस भागवतम कक्षा में। और अब हम जो है चर्चा कर रहे हैं स्कंद 8 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 49। तो मैं श्लोक का उद्धरण करूंगा तो मेरी पीछे रहेगा। यथा हि स्कंद शाखाना तरूर मूल अवसे सचेतनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेषाम् आत्मना चहि। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यथा जिस प्रकार ही निरसंदेह स्कंद तने शाखानाम तथा डालों का तरो वृक्ष की मूल जड़ अवसेचनम सिंचाई एवं इस प्रकार आराधनम पूजा विष्णु भगवान विष्णु की सर्वेशां सबका आत्मना परमात्मा का च भी ही निरसंदेह। अनुवाद। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः ही दुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो उससे हर एक की सेवा हो जाती है क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। मेरे पीछे आप अनुवाद हो रही। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः ही दुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। तात्पर्य, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आराधनां सर्वेषां विष्णु आराधनां परम तस्मात् परत्रम देवी तद्यानां समर्चना। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, और विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त वैष्णव की पूजा। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं, वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। कामे स्थिर्थे ऋत ज्ञाना प्रबंते अन्य देवता, भगवद्गीता 7:23। क्योंकि लोग अनेकानेक भौतिक इच्छाओं के कारण चिंतित रहते हैं, वह शिव, ब्रह्मा, काली, दुर्गा, गणेश तथा सूर्य की पूजा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए करते हैं। किंतु भगवान विष्णु की पूजा करके सारे फलों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि भागवत 4:31-14 में अन्यत्र कहा गया है, यथा तरुर मूल निश्चिनेना तिप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः प्राणपराच यथेन्द्रियाणां तथैव सवर्णमचुत्यज्य। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींच कर वृक्ष के तने तथा सभी डालियों, फूलों तथा फलों को पोषित किया जाता है, और जिस प्रकार उदर में भोजन की पूर्ति करके शरीर के सारे अंगों की तुष्टि की जाती है, उसी प्रकार विष्णु की पूजा करके हरे को तुष्ट किया जा सकता है। कृष्णा भावनामृत कोई सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, प्रत्युत ये विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। इस आंदोलन में जाति, पांति, धर्म या राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि मनुष्य विष्णु तत्व के स्त्रोत्र भगवान कृष्ण की पूजा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और सभी तरह से पूर्ण बन जाता है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शन्मतं स्वाकथा कृष्णा पुण्या श्रवण कीर्तना हृदयं स्थितो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सता। हरे कृष्ण। तो शुरू करने से पहले मैं सब वरिष्ठ वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा कि मैं भगवान का गुणगान में और आप सबकी प्रसन्नता के लिए मैं और अपने शुद्धिकरण के लिए इस पर कुछ बोल पाऊँ और इस श्लोक के ऊपर मैं कुछ चर्चा कर पाऊँ। तो मैं सबसे प्रार्थना की आशीर्वाद की याचना करता हूँ और मैं इस श्लोक के ऊपर फिर अब कुछ कहने का प्रयास करूँगा। तो ये जो श्लोक है, हम जानते हैं इस प्रसंग को, शायद हम लोग हर रोज सुनते हैं और जानते हैं कैसे देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनसे सुरक्षा की याचना कर रहे हैं, और उस प्रार्थना की श्रृंखला में ये श्लोक आता है। और जब मैंने श्लोक पढ़ा तो जब आपने भी श्लोक को सुना होगा तो इससे ही बिल्कुल एक मिलता जुलता श्लोक जो है नारद मुनि भी कहते हैं 34 कर्ण। अगर आप ये श्लोक का मतलब देखें तो कहते हैं यथा ही मतलब जिस प्रकार स्कंद शाखा नाम, जैसे एक पेड़ का स्कंद होता है उसका ट्रंक, शाखा नाम उसकी जो शाखाएं होती हैं वो तुष्ट हो जाती हैं अगर तरोर मूल अवसेचनम, कि अगर हम लोग एक पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, उसका सिंचन करते हैं, तो जो जड़ है वो उस पानी को हर शाखा और स्कंद तक ले जाता है और वो तुष्ट हो जाता है। एवं उसी तरीके से आराधनम विष्णु, जब हम विष्णु की आराधना करते हैं तो क्या होता है, सर्वेशम, सर्व मतलब सारे, सर्वेशम मतलब जितने भी जीव हैं वो भी तुष्ट हो जाते हैं अगर कृष्ण तुष्ट हो जाए। आत्मनश्च ही आत्मनश, क्योंकि भगवान जो है वो परमात्मा है, हर किसी के हृदय में स्थित है, चाहे वो जंगम हो या स्थावर हो, भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में है। तो अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो हर कोई जीव संतुष्ट हो जाता है, उसकी सेवा पूरी हो जाती है। ऐसे ही बिल्कुल मिलता जुलता श्लोक जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बोल रहे हैं वो भागवतम के 14 स्कंद में भी आता है, 31st चैप्टर में 14th श्लोक में आता है, यथा तरुर मूल निश्चिनेना तृप्यन्ति तत् स्कंधभुज उपशाखा, कि जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से सभी शाखाएं में पानी आ जाता है, स्कंध में पानी आ जाता है। प्राण उपरच यथा इंद्रियाणाम, जिस तरीके से एक शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, दस इंद्रिया, तो जितनी भी इंद्रियां हैं वो भी तुष्ट हो जाती हैं अगर हम किसकी सेवा करें, पेट की। अगर खाना हम पेट में डालते हैं तो पेट उसको पचाकर उसकी जो शक्ति है पूरे शरीर में फैलाता है और पूरा शरीर जो है उसको शक्ति प्रदान होती है। सो उसी तरीके से तथे व सर्व अर्हनम अच्युत्य इच्छा, अच्युत्य भगवान का नाम है, अच्युत्य जिनका च्युत नहीं होता, जो गिरते नहीं, जब अच्युत्य की इच्छा उनकी पूजा करते हैं तो क्या होता है, सर्व अर्हनम जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा उसमें सम्मिलित है, इंक्लूडेड है। तो भगवान की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा उसमें इंक्लूडेड है। तो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा कौन करता है, भगवान बताते हैं, जिसके अंदर ये लक्षण है वो देवताओं की पूजा करता है। और वो लक्षण भगवान क्या बताते हैं, 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कामे स्थिरते हृदय ज्ञान प्रबद्धते अन्य देवता, जो कामों की इच्छाओं से कुछ भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त हैं तो हृदय ज्ञान, उनका जो ज्ञान है हृदय हो जाता है, ढक दिया जाता है या ज्ञान जो है वो आच्छादित हो जाता है, कवर हो जाता है, वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, किसकी शरण लेते हैं, प्रबद्धते अन्य देवता, बाकी देवताओं की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे कुछ इच्छाओं की पूर्ता करने के लिए। और भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना भी की है कि अलग अलग जो देवता हैं वो अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जैसे भागवतम में 2वें स्कंध के 30वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कौन सी देवता कौन सी इच्छा की पूर्ति करता है, आप जानना चाहेंगे, जोर से बोले हरि बोल, नहीं जानना चाहेंगे और जोर से हरि बोल। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कौन से देवता कौन सी इच्छा की पूर्ति करते हैं, वो उसका वर्णन करते हैं। तो अगर आपकी कोई मिलती जुलती इच्छा है तो आप जाइएगा नहीं, हम आगे जब पूरी करेंगे फिर आप सोचेगा। तो वो कहते हैं कि अगर किसी को पूरे विश्व का राजा बनना है, डोमिनेशन ओवर अदर्स है ना, दूसरों के ऊपर प्रभुत्व जमाना है, तो उसको किसकी आराधना करनी चाहिए, ब्रह्मा जी की। किसी को अगर बहुत विद्वान बनना है तो उसको किसकी आराधना करनी चाहिए, गुड गेस, बस शिव जी लिखा था उन्होंने तो एनी हाउ बट गुड गेस, तो शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अगर कोई मैथुन जीवन का सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसको किसके पास जाना चाहिए, ये तो ऑब्वियस आंसर होना चाहिए, गुड गेस फॉर इंद्र लिखा है एनी हाउ इंद्र के पास जाना चाहिए। किसी को बहुत सारा धन चाहिए, अनदर गुड गेस बट रॉन्ग आंसर, हो भी सकता है सही आंसर भी हो सकता है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं बट वासु लिखा हुआ था, वसु की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। अगर किसी को अच्छी संतान चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए, एनी गेसेस, प्रजापति की। अच्छा किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए या किसी को अगर लंबा जीवन चाहिए किसकी पूजा करनी चाहिए, लिखा अश्विनी कुमार। किसी को बहुत सुंदर बनना है, खूबसूरत बनना है तो किसकी पूजा करनी चाहिए, गंधर्वों की। और किसी का अगर वो अच्छा संबंध चाहते हैं अपने पार्टनर से, पति का पत्नी से या पत्नी का पति से अगर संबंध में कुछ गड़बड़ है या संबंध को सुधारना चाहते हैं तो किसकी पूजा करनी चाहिए, उमा की, उमा की। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि भगवान ने उनको अलग अलग शक्ति दी है अलग अलग वर प्रदान करने के लिए, लेकिन इससे पहले लोग जो हैं वो निर्णय ले लें, चलो इनके पास जाना, इनसे कल से आरती इनकी उतारनी है, इससे पहले वो निर्णय लें वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उधारती तीव्रे न भक्ति योगे न यदिता सा पुरुष परम। कहते रुको 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 रुको, अगर आपकी बहुत सारी कामनाएं भी हैं, अकाम सर्व काम, सर्व काम मतलब बहुत सारी इच्छा है, प्रभु जी एक से मन नहीं भरता, मैं मेरी तो सारी इच्छा है, मैं खूबसूरत भी बनना चाहता हूँ, मैं धन भी चाहता हूँ, मैं अच्छी संतान भी चाहता हूँ, अच्छी पत्नी भी चाहता हूँ, दूसरे प्रभु भी जमाना चाहता हूँ, अच्छा स्वास्थ्य भी चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ। कहते नो प्रॉब्लम, सर्व काम, अगर आपकी सारी इच्छा है, कुछ भी आप चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, नो प्रॉब्लम, वो बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ भी आपकी इच्छा हो, सर्व काम अकाम, या आपकी कोई इच्छा ना, या मोक्ष काम, आपकी इच्छा जो है वो मुक्ति प्राप्त करने की है ना, अल्टीमेट बेनिफिट भगवान के पास जाने की है, मुक्त होने की है। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार धी, अगर आप बुद्धिमान है, धी मतलब बुद्धि, उदार धी मतलब आपकी अगर बुद्धि विकसित है तो आपको क्या करना चाहिए, तीव्रे न भक्ति योगे न यदिता स पुरुषा परम, जो परम पुरुष है उनकी भक्ति करनी चाहिए, और किस तरीके से करनी चाहिए, तीव्रे न, हल्के फुल्के नहीं, तीव्रता से। जब तीव्र न भक्ति करेंगे तो भगवान जो है उसकी इच्छा की निश्चित रूप से पूर्ति करेंगे। और शास्त्रों में ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं कि कई लोगों ने भगवान की शरण ली कोई भौतिक इच्छा से, लेकिन भगवान ने ना सिर्फ उनकी भौतिक इच्छा की पूर्ति की बल्कि उनका उद्धार भी किया, उनका उनको शुद्ध भी किया। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि चार किस्म के लोग मेरे पास आते हैं, कौन कौन से, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञान, चतुर्विधा भजन्ते मम जनस्य कृतिनो अर्जुना, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भारत ऋषभ। तो अगर कोई पुण्यवादी है, किसी के अंदर पुण्य एकत्रित है, और अगर वो अर्थो अगर दुखी है तो किसकी शरण लेगा, भगवान की शरण। अगर उसके अंदर पुण्य एकत्रित है और अगर उसको कोई कामना है, वो कुछ धन कमाना चाहता है, कोई कामना की पूर्ति करना चाहता है, तभी वो कृष्ण की शरण लेगा। जिज्ञासा है तभी वो कृष्ण की शरण लेगा, और ज्ञानी है तभी वो कृष्ण की शरण लेगा। और शास्त्र में ऐसे बताया है, और चार इसके प्रमुख उदाहरण है। जैसे आर्तों का उदाहरण कौन बताते हैं भागवतम में, जब कोई दुखी हो उसने कृष्ण की शरण ली, गजेंद्र ने, अर्थार्थी ध्रुव महाराज, जिज्ञासु शौनक ऋषि और उनके जितने भी संत थे, और ज्ञानी चार कुमार सूत गोस्वामी भी उन्होंने शरण ली, है ना। तो और फिर जैसे ध्रुव महाराज, हम कोई भी उदाहरण उठा सकते हैं। ध्रुव महाराज जब वो छोटे से बच्चे थे, उनके पिता का नाम था महाराज उत्तानपाद, वो स्वयंभू मनु के बेटे थे, और स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के बेटे थे। तो ध्रुव महाराज की इच्छा हुई कि उन्हें पिता के गोद में बैठूं, लेकिन जैसे ही गए, उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, सुनीति के बेटे थे ध्रुव और सुरुचि के बेटे थे उत्तम। तो जैसे बच्चों के अंदर होता है कि मैं पिता की गोद में बैठूं, तो उनकी इच्छा हुई, पिता बैठे थे और उत्तम भी बैठे थे, और वो पिता की गोद पर बैठने के लिए गए। जब बैठने के लिए गए तो वहां पर कौन खड़ी थी, सुरुचि। सुरुचि उनको टोक दिया और उनको कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने पिता की गोद में बैठ रहे, तुम इसके लायक नहीं। अगर वास्तव में तुम्हें पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तुम भगवान से वो प्रार्थना करो कि तुम्हारा अगला जन्म तुम मेरे कोख से पैदा हो, और मेरे कोख से जब तुम पैदा हो गए तो तुम्हारे अंदर योग्यता आएगी जिससे तुम अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। तो जब ऐसे ध्रुव महाराज को कहा, श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, तो जब ऐसा उनको कहा, अब ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे तो निश्चित रूप से बहुत क्रोधित हो गए और बहुत बेइज्जत उन्होंने महसूस किया। हालांकि छोटे से बच्चे थे, 5 साल की उम्र थी, लेकिन वो बहुत क्रोधित हो गए और रोते हुए अपनी माता के पास गए, और माता ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है कि तुम्हारे जो पिता है मुझसे प्रेम नहीं करते, सुरुचि से प्रेम करते हैं, और जो सुरुचि कह रही है वो ठीक कह रही है, तुम्हें किसकी शरण लेनी चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने उनको वृंदावन की तरफ भेजा, और वो गए तो रास्ते में उनको नारद मुनि मिले, उन्होंने नारद मुनि से बात चर्चा की, नारद मुनि उनको कुछ बातें करके फिसलाने की कोशिश तो की, लेकिन ध्रुव महाराज बहुत दृढ़ थे, और उन्होंने कहा मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे ऐसा राज्य प्राप्त करना मैं चाहता हूं कि जो पूरे 3 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो नारद मुनि समझ गए कि दृढ़ है, और उन्होंने उनको मधुवन भेजा और भगवान को प्राप्त करने के लिए मंत्र दिया, विधि बताई और वो गए और उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो उनको भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने क्या कहा, सौम्यन यथार्थ कृतम कृतास्तु वरम न यचेत, सौम्यन कृतार्थ यस्मिन वरम न यचेत, कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। भगवान उनको वो राज्य देना चाहते थे लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ कान से कुछ टुकड़ों के लिए के प्रति भाग रहा था एक राज्य स्वीकार करके, लेकिन मुझे आपकी प्राप्ति हो गई है तो मुझे लग रहा है मुझे हीरा प्राप्त हो गया। तो किसी अगर हीरा प्राप्त हो जाए तो कांच के टुकड़े की क्या कीमत है उसके सामने। तो राजा नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया और ये आशीर्वाद दिया कि वो जब राज्य करेंगे, राज्य करने के बाद वो उनको भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने दोनों किया कि उनकी इच्छा भी पूरी की और साथ साथ उनको शुद्ध किया कि वो भगवान को प्राप्त भी कर सके। तो भगवान से इच्छा करने का ये फायदा है। गीता में भगवान कहते हैं अंतवंतु फलम तेषम तद भवति अल्प मेधसम, कि जो बाकी देवताओं की से कुछ मांगता है वो अल्प मेधसम है। मेधसा मतलब बुद्धि, अल्प मेधसा मतलब उसकी बुद्धि बहुत छोटी है। अगर कोई देवताओं से मांगता है तो उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई क्योंकि अंतवंतु फलम तेषम, जो भी उनको फल प्राप्त होगा वो क्षणिक होगा, बड़ी जल्दी छीन लिया जाएगा। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि ये अप्य अन्य देवता भक्त जयंति श्रद्धयान विता ते अप्य मम एव कौन्ते यजंती अविधि पूर्वकम। वो कहते हैं ये अप्य अन्य देवता भक्त यजंती श्रद्धयान विता, कि जो बाकी देवताओं की भक्ति करता है बहुत श्रद्धा पूर्वक, ते अप्य मम एव कौन्ते हे कुंती पुत्र वो मेरी ही पूजा कर रहा है लेकिन यजंती अविधि पूर्वकम, वो गलत तरीके से कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, नाक को ऐसे ना पकड़कर घुमाकर पकड़ रहा है। उसे क्या जरूरत है, अगर उसे कुछ चाहिए तो मेरे पास आए मैं दूंगा। तो जो देवताओं के पास जाता है भगवान कहते हैं कि वो सोर्स गलत है, उस वो बुद्धिमान नहीं है। अगर उसे कुछ चाहिए उदार थी तो उसको मेरे पास आना चाहिए। तो हम ये चीज सीखते हैं और हम देखते हैं कि भगवान के पास कोई किसी रूप से भी जाता है, चाहे कोई भौतिक इच्छा से भी जाता है, तो भगवान क्या सोचते हैं वो हम चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में पढ़ते हैं। तो बहुत सुंदर प्यार आता है कि जब भगवान के पास कोई भौतिक इच्छा लेके जाता है तो भगवान उसके साथ क्या करते हैं, तो देखते हैं। कहते हैं अन्य कामे यदि करे कृष्ण रे भजन ना मागिया इह कृष्ण तारे देन स्वचरण, कि भगवान कहते हैं कि अन्य कामे यदि करे कृष्ण रे भजन, कि नो प्रॉब्लम, अगर कोई दूसरी कामना से भी कोई भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति भजन करता है, अन्य कामे भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, कोई और कामना की पूर्ति करने के लिए, तो क्या भगवान करते हैं ना मागिया इया कृष्ण तारे देन स्वचरण। अगर वो भगवान के चरण कमलों को मांगता भी नहीं है, वो भगवान को इच्छा नहीं कर रहा, भगवान मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपसे यही चाहिए, आप नहीं चाहिए लेकिन आपसे यही चीज चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं फिर भी उसको वो चीजें भी देते हैं लेकिन देन स्वयं स्वचरण अपने चरण कमलों को भी दे देते हैं, चाहे वो उसको मांगता नहीं अच्छा नहीं करता लेकिन फिर भी भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं। कृष्ण कहे आम भजे मांगे विषय सुख अमृत छाड़ी विषय मांगे ए बड़ा मूर्ख। भगवान क्या कहते हैं कृष्ण कहे, कृष्ण कहते हैं आम भजे मांगे विषय सुख, मेरी भक्ति कर रहा है लेकिन मांग क्या रहा है मुझसे, विषयों का सुख मांग रहा है। अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ा मूर्ख, भगवान उसको क्या कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा मूर्ख है, क्यों, क्योंकि वो विषय सुख मांग रहा है लेकिन किसको छोड़ रहा है, अमृत को। अमृत छाड़े विषय मांगे, वो विषय को स्वीकार कर रहा है लेकिन अमृत को छोड़ रहा है। अगर उसमें चरण कमलों को प्राप्त कर लेगा तो परम आनंद प्राप्त होगा उसको, रसोपेविस्य धर्मस्य परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते, he will get a higher taste। तो वो हायर टेस्ट को छोड़कर लोअर टेस्ट ले रहे हैं तो मूर्ख है। जैसे अगर आप किसी को कहें भैया आपके लिए बेंटली गाड़ी है और एक नैनो है, तो कहेंगे मुझे बेंटली गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मुझे नैनो गाड़ी दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, ए बड़ा मूर्ख तो बहुत बड़ा मूर्ख है, उसको इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है लेकिन वो नानो के पीछे पड़ा। हाँ ये लॉजिक ठीक हो सकता है, ट्रैफिक बहुत है तो नानो ज्यादा अच्छी रहेगी, वो अलग बात है, बट नो एज अ मॉडल ऑफ अ कार अगर देखा जाए तो बेंटले इज फार बेटर या कोई एनी अदर मॉडल. तो वो भान कह रहे हैं कि अमृत छाड़े विषय मांगी, यही बड़ा मूर्ख कि अमृत को छोड़कर वो तुच्छ विषय सुख मांग रहा है, तो बहुत बड़ा मूर्ख है. फिर आगे भान क्या कहते हैं, काम लगी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़े दास है ते ए अभिलाषे. कि काम लगे कृष्ण भाजे पाए कृष्ण रसे, और भान क्या करते हैं, काम लगे कृष्ण भाजे पाए कृष्ण रसे. तो भान क्या करते हैं, जब ऐसे वो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, उसकी कामना की पूरी इच्छा करते हैं, लेकिन पाए कृष्ण रसे, उसे कृष्ण रस प्राप्त हो जाता है. काम छड़ी दास हैते ए अभिलाषे, काम छड़ी, फिर क्या करता है वो अपनी कामनाओं को छोड़ देता है, दास हैते अपने आप को दास मान लेता है ही अभिलाषे, उसकी एक इच्छा रह जाती है, बस भगवान मुझे अब कामनाओं की कोई इच्छा नहीं है, मैं आपका दास बनना चाहता हूं. तो अल्टीमेट बेनिफिट ये होता है. तो ऐसे भगवान जो है उसकी इच्छा भी पूर्ति करते हैं और उसका उद्धार भी करते हैं. और हम देखते हैं कि भगवान हर किसी का उद्धार करते हैं, कैसे भी अगर कोई कृष्ण की के संपर्क में आ जाए तो उसका बेनिफिट ही होता है. जैसे जब हम भागवतम में वो प्रसंग पढ़ते हैं, जब नल कुबेर और मनी ग्रीव को शाप मिलता है और वो नंद महाराज के आंगन में दो वृक्ष बन जाते हैं, और फिर भगवान जाकर उनका उखल से उन वृक्ष को गिराकर उनका उद्धार करते हैं, तो वो नल कुबेर और मनी ग्रीव भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं. और एक प्रार्थना मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो कहते हैं, नमः परम कल्याणम नमः परम मंगलम वासुदेव शांताया यदुना पते नमः. वो कहते हैं नल कुबेर मनीग्रीव जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं नमः परम कल्याणम, भगवान आपको नमस्कार करते हैं. क्यों आपको नमस्कार करते हैं, कि आपका बहुत महत्वपूर्ण गुण है. आपका महत्वपूर्ण गुण क्या है, कि जो भी आपकी शरण लेता है उसके जीवन में क्या होता है, परम कल्याण होता है उसका, सिर्फ कल्याण नहीं परम कल्याण होता है. नमः परम कल्याणम नमः परम मंगलम, कि उसके जीवन में और क्या आता है, परम मंगल. वासुदेव शांताया, हे वासुदेव शांताया, आप पूर्ण रूप से शांत हैं. यदु नाम पते नमः, आप यदुपति हैं तो मैं आपको नमस्कार करता हूं. कि जो भगवान श्री कृष्ण के कैसे भी संपर्क में आ जाए तो ये तो निश्चित है कि उसका कल्याण जरूर होगा, उसके जीवन में मंगल जरूर आएगा. हो सकता है तथा कथित इमीडिएट ऐसा रिजल्ट ना दिखे, बट अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा, है ना, अल्टीमेट बेनिफिट उसको जरूर मिलेगा. जैसे मैं एक कथा पढ़ रहा था, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कि जब जहांगीर थे, जब मुसलमान का राज्य हुआ करता था हिंदुस्तान में, तो जहांगीर राजा है, बाबर और फिर उसके हुमायूं अकबर, फिर जहांगीर आए. तब जहांगीर का राज्य था तो ये सब मुसलमान राजा का जो है एक बड़ा उद्देश्य होता था, कैसे हम हिंदू धर्म को नष्ट करें, हिंदू मंदिरों को नष्ट करें और हिंदुओं को जो है वो मुसलमान बनाएं. तो जिन जिन में हिंदुओं की आस्था होती थी वो उनको नष्ट करने का प्रयास किया करते थे. तो उस टाइम भगवान जगन्नाथ की बहुत विशेष और विस्तार रूप से भक्ति और पूजा की जाती थी जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में. तो महाराज जहांगीर, जो जहांगीर थे, उन्होंने निर्णय लिया कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है इसको नष्ट कर दिया जाए, और जितने भी उनको उसके पुजारी हैं या तो उसको मुसलमान बना दिया जाए, और जो मुसलमान ना बने उसको मार दिया जाए. तो जहांगीर ने यह निर्णय लिया और सोचा कि किसको इस कार्य सौंपा जाए. तो उनके एक सेनापति थे, उसका नाम था लाल बेग. तो उनको एक कार्य सौंपा गया, और क्यों वो इसलिए सौंपा गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रूथलेस थे, निर्दयी थे, खासकर हिंदुओं के प्रति. तो उनको एक कार्य सौंपा गया कि वो जाकर जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट कर दें, उसको दूषित कर दें, और जितने भी पुजारी हैं, जितने भी भक्त हैं, या तो उनको मुसलमान बना दें या उनको जान से मार. तो लाल बैग जो है वो तैयार हुए और सब सेना के साथ जो है वो उड़ीसा पहुंचे और कटक पहुंचे, और कटक से जो है वो पूरी सेना के साथ आक्रमण के लिए निकले पुरी की ओर. लेकिन भगवान की कोई और योजना थी। जब आक्रमण करने के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने एक दृश्य देखा, और क्या दृश्य देखा, उन्होंने देखा एक एक नवयुवक स्त्री को देखा, और वो एक ब्राह्मणी थी, उनको देखा और इतनी खूबसूरत उनको लगी कि उनके मन में इच्छा आई कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। लेकिन पता चला कि जो ब्राह्मणी थी वो शादीशुदा थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले उसका जो ब्राह्मण पति था उसकी मृत्यु हुई थी, तो विधवा थी। जब उसने ये इरादा रखा उस ब्राह्मणी के सामने, तो ब्राह्मणी ने तुरंत जो है उसको इनकार कर दिया, लेकिन वो क्रूर था तो उसे जबरदस्ती उसका अपहरण कर लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो वो स्त्री चिल्लाती रही, मदद मांगने लगी, लेकिन कोई मदद उसकी कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास सब शक्ति थी, उसके पास सारी सेना थी। तो जबरदस्ती वो लाल बेग जो है इस विधवा ब्राह्मणी को उठाकर वापस कटक ले आया, और उसने सोचा कि मैं कुछ दिनों के बाद जो है पुरी में जाकर जगन्नाथ जी के ऊपर आक्रमण करूंगा, मूर्तियों का खंडन कर दूंगा, मंदिर को नष्ट कर दूंगा। तो प्लान में कुछ डिले आ गया और उस स्त्री को जो है वो वापस कटक ले आया। तो फिर से उसने याचना करता उस तरीके से कि वो उसको स्वीकार करे, लेकिन क्योंकि वो सती थी तो उसने स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसने उसको धमकाया कि अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं पुरी में जाकर जगन्नाथ के विग्रहों को तोड़ दूंगा और मंदिर को दूषित कर दूंगा और सब लोगों को मार दूंगा, ब्राह्मणों को खत्म कर दूंगा। तो ऐसे जब धमकाता था तो उस स्त्री ने जो है उस ब्राह्मणों की और सब भक्तों की रक्षा करने के लिए ये कदम उठाया और उसने स्वीकार किया, ठीक है, और फिर उसके साथ वो रहने लगी। और फिर जो है वो उस राजा ने उसका भोग करना शुरू किया और उसके साथ शोषण करता, लेकिन जो है वो उसको सहती, तो उसका एक, एक, एक त्याग था भगवान के और भक्तों की रक्षा के। तो इतने में क्या हुआ कि जब उसको दोबारा इरादा बना आक्रमण करने के लिए, इतने में एक मौला था दिल्ली से, तो उसकी ईर्ष्या थी इस लाल बेग से। तो उसने क्या किया कि राजा को एक गलत खबर दी कि जो है लाल बेग जो है वो एक धोखेबाज है, तो उसको जो है निष्कासित कर देना चाहिए। तो राजा के पास जब खबर पहुंची, गलत खबर होने के कारण जैसा भी है जो है वो राजा ने उसको वापस बुला लिया कि तुम कटक से वापस आ जाओ, मैं किसी और को भेजूंगा जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के। तो लाल बेग को वापस आना पड़ा, लेकिन रास्ते में किसी ने जो है लाल बेग का वध कर दिया, उसको मार दिया। तो स्त्री विधवा जो है बीच में एक गर्भवती हो गई और इस स्त्री से एक संतान की उत्पत्ति हुई। स्त्री का नाम था ललिता और संतान की उत्पत्ति, और संतान बड़ी होने लगी। तो फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद फिर से ये निर्णय लिया गया कि जगन्नाथ पुरी पर आक्रमण करें। तो इस बार जो लाल बेग का बेटा था उसका नाम था साल बेग, उसको चुना गया कि लाल बेग एक क्रूर राजा था तो स्वाभाविक है कि बेटे को भी उतने क्रूर होना चाहिए। तो उसको चुना गया कि अब साल बेग जाकर आक्रमण करेगा और जगन्नाथ मंदिर को के ऊपर कब्जा करेगा। तो साल बेग जो है अब सेना के साथ जो है निकल पड़े, लेकिन जब युद्ध हुआ तो साल बेग जो है बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए और खूब पीड़ा में आ गए, को बहुत चोटें लगी युद्ध में, और उड़ीसा के राजा से युद्ध हुआ, उनको बहुत चोटें लगी और बहुत वो कराहने लगे और दुख में पुकारने लगे। और समाव ऐसे हुआ कि बाकी सेना जो है वो साल बेग को अपनी माता के पास ले गए, ललिता जी के पास। तो वो ललिता के सामने रोने लगे और कराहने लगे दर्द के कारण। उन्होंने माता को कहा कि इससे ज्यादा अच्छा है कि मुझे तुम मार दो, मैं दर्द और सह नहीं सकता। तो बार बार उसे क्रंदन कर रहे थे, बार बार माता के सामने हमें दुख व्यक्त कर रहे थे। इतने माता का जो हृदय जो है वो कोमल हो गया। फिर माता ने कहा, अगर तुम एक पीड़ा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम उस वृंदावन चंद्र की पूजा करो जो वृंदावन के मालिक है और उनकी गोपियां उनकी सखी हैं, और उनके नाम का तुम कीर्तन करो। और उनका नाम ऐसा है, वो भव औषधि के समान है, वो ऐसी औषधि है वो सारे रोग ठीक कर देती है। ये किसने कहा? ललिता माता ने किसको कहा? सालबेग। तो सालबेग जो है वो भ्रमित हो गया, उसने अभी तक वृंदावन चंद्र नाम कुछ सुना तो था नहीं, ना वृंदावन सुना था, नहीं उसको ये तो पता था कि हिंदू के भगवान। तो उन्होंने कहा, माता छी छी छी, तुम कैसी बातें कर रहे हैं? तुम हिंदू के देवता के, वो तो काफिर हैं, तुम उनकी बात कर रहे हैं? तो तुम कृष्ण के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुम तो एक मुस्लिम औरत हो। तो जब उस ललिता ने सुना कि मैं वो मुस्लिम औरत, तो रोने लगे। तो सालकिन ने कहा, माता तुम रो क्यों रहे हो? तुमने कहा मैं मुस्लिम नहीं हूं। मैं मुस्लिम नहीं? हाँ। तो सालबे के लिए एक और झटका था कि जो है पता चला उसकी माता मुस्लिम नहीं थी, इसका मतलब शायद वो भी मुस्लिम नहीं था। तो मैं, माता तुम कैसे शब्द बोल रहे? तो फिर माता ने पूरी कहानी बताई। और जब सालबे ने ये सुना तो वो बहुत मायूस हुए कि माता की इस घटना को सुनकर। लेकिन उन्होंने कहा, माता तुमने मेरे शरीर का, ये जो शरीर है ये तुमने मुझे दिया है, ये शरीर तुम्हारा है, और जो तुम बोलोगी मैं वैसा वैसा करूँ, तो बताओ मुझे क्या करना है। तो माता ने, तुम घबराओ मत, हम दोनों जो है 12 दिनों के लिए जो है वो निरंतर भगवान के नाम का जप करें और भूखे प्यासे भगवान से प्रार्थना करेंगे, और 12 दिनों के बाद मैं निश्चित रूप से कह रही हूं कि तुम्हारे जितने भी घाव हैं वो भर जाएंगे। घबराओ मत, 12 दिनों के लिए हम तपस्या करके निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, और निश्चित रूप से 12 दिनों में सब ठीक हो जाए। तो ऐसे एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, करते करते 12 दिन हो गए, लेकिन घाव जो है वो भरे नहीं भरे, हाँ नहीं भरे, संभव नहीं भरे। तो साल भी बहुत फिर हतोत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, माता आपने मुझे कहा था कि कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का नाम का जप करो, 12 दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा, और मुझे सब दर्द और सहा नहीं जाता। तो माता का, तुम घबराओ मत, कभी कभी भगवान जो है वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो उसमें सफल हो जाता है वो कामयाब हो जाता है। तुम थोड़ा धैर्य बना के रखो, सब ठीक हो जाए। तो ललिता माता ने सालबे को तो धैर्य प्रदान किया, लेकिन फिर अलग से जाकर जो है वो भगवान के सामने रोने लगे। नहीं भगवान, मैं एक नीच औरत हूं, लेकिन मैं आपकी भक्ति करने का प्रयास कर रही हूं, और अभी इस समय हमें आपकी भक्ति, अब आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। मेरा बेटा जो है वो मृत्यु की कगार पे है, अगर अभी आप मदद नहीं करेंगे तो जो है वो कभी भी मृत्यु प्राप्त कर सकता है, और अगर वो मर जाएगा तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। तो पूरी विनम्रता से जो है वो प्रार्थना करने लगी भगवान से। तो रात को जब सालबेग सोए तो उनके सपने में कौन आए? श्याम सुंदर आए, कृष्ण आए, वृंदावन चंद्र आए उनके सपने में, और भगवान ने उनको एक विभूति दी, और भगवान ने कहा, वत्स तुम घबराओ मत, ये विभूति लो, अपने सब घाव में भर दो, कल तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। जैसे सालबेग उठे तो पहली बार उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया था, तो बहुत प्रसन्न हो गए। और जब वो उठे तो एक बदलाव था। क्या बदलाव था? कि अब उनके सारे घाव भर गए थे और उनको कोई दर्द महसूस नहीं आ रहा था। बोले हरि वो सारे घाव भर गए थे और कोई जो है उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा था और बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। बस इतना ही देर था कि उनकी पूरी आस्था जो है वो भगवान पे हो गई। उन्होंने कहा कि इतने दयालु भगवान जो है वह, कि मैं पूर्ण रूप से उनकी शरण लेना चाहता हूं। अब वो दिन रात भगवान की भक्ति करने लगे, सब भूल गए, कहाँ के राजा थे, कौन से मुसलमान थे, सब भूल गए, और निरंतर भगवान की भक्ति करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब उनकी इच्छा हुई कहाँ जाने की? जगन्नाथ मंदिर जाने की। अब वैसे तो पहले आक्रमण करने जाने वाले थे, लेकिन इस बार जगन्नाथ की याचना करने के लिए गए। तो पूरे रास्ते भगवान के लिए अलग अलग गीत लिखते हुए जा रहे थे, प्रार्थना करते हुए जा रहे थे। लेकिन जैसे जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, लोगों को पता चला कि सालबेग आया है, यही वो मुसलमान राजा था जो मंदिरों को खंडित करना चाहता था, ब्राह्मणों को मारना चाहता था। तो सब उसको मारने पीटने लगे, सब उसको जो है उसको कोसने लगे और उसकी बुराई करने लगे, उसको कोई स्थान नहीं मिला और उसको पीट पीट के भगा दिया। तो उनको कोई स्थान ही नहीं मिला। तो किसी घर में भी जाते, मंदिर में तो प्रवेश तो पूर्ण रूप से संभव नहीं था, लेकिन पूरे पूरी में उनको जगह नहीं मिली। तो सालबेग बहुत भगवान को उनको भगवान से विरह होने लगा, और उन्हें लगा भगवान मैं निश्चित रूप से बहुत पापी हूँ, एक यमन में मेरा जन्म हुआ है, यमन परिवार में मेरा जन्म हुआ है, निश्चित रूप से मैं योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरण कमलों के दर्शन कर सकूँ। अगर पुरी में मैं दर्शन नहीं कर सकता तो कहां आपका दर्शन प्राप्त कर सकता? तो आप वृंदावन के मालिक हैं। तो फिर वो वृंदावन चल पड़े और पूरे रास्ते भवन को याद करते हुए वृंदावन गए। लेकिन रास्ते में एक जगह आती है बालसोर, तो बालसोर गए। तो जब बालसोर गए तो वो भी हिंदू मंदिर था, वहां श्याम सुंदर बहुत सुंदर विग्रह। तो उनकी बहुत इच्छा हुई कि जो श्याम सुंदर मेरे सपने में आए थे मैं भवन को देखना चाहता हूं। वहां पर भी लोगों को कोसने लगे, मारने लगे, उनको भगा दिया, किसने उनको भवन के दर्शन नहीं करने लगे। तो वह भवन के मंदिर के पीछे जाके जोर जोर से रोने लगे, क्रंदन करने लगे, भगवान के लिए पुकारने लगे। इतना वो भवन के विरह में रोने लगे और क्रंदन करने लगे कि जब पुजारी ने ऑल्टर खोला, मंदिर खोला और भवन की सेवा करने के लिए गए तो देखा कि भगवान ऑल्टर में थे ही नहीं, भगवान मंदिर में थे ही नहीं, भगवान गायब, भगवान अंतर्धान हो गए। तो सब हाहाकार मच गया कि श्याम सुंदर कहाँ गए, किसी को कुछ खबर नहीं। तो राजा को खबर पहुंची तो राजा भी बहुत परेशान हो गया। लेकिन सपने में राजा जब सोया रात को तो सपने में श्याम सुंदर आया और उन्होंने बताया कि ये मेरा भक्त है सालबेग, ये मेरा दर्शन करना चाहता है और तुम दर्शन करने नहीं दे रहे, तो तुम व्यवस्था करो कि वो दर्शन कर सके। तो राजा सुबह उठता है और तुरंत जाता है और क्या करता है कि दीवार के जहां भगवान थे तो पीछे दीवार पे एक बहुत बड़ा खिड़की बना देता है ताकि सालबेग आकर दर्शन कर सके। तो इस बहाने वो मंदिर का नियम भी नहीं टूटेगा और भगवान के वो दर्शन भी कर पाए। तो फिर राजा ने खिड़की बनाया और फिर इसी कारण जो है सालबेग ने जैसे ही उस खिड़की में अंदर देखा तो अचानक क्या हुआ, उस ऑल्टर में भगवान प्रकट हो गए और श्याम सुंदर जी की विग्रह द्वारा आ गए और श्याम सुंदर की और श्याम सुंदर जी द्वारा आ गए और सालबेग ने पूरे हृदय से भगवान का दर्शन किया और अपने हृदय में उनका आलिंगन किया और भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना करने लगे। और करते करते फिर वृंदावन आ गए। जब वृंदावन आ गया उनकी इच्छा हुई कि अब रथ यात्रा का समय आ रहा है कि मुझे अब रथ यात्रा में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं लेट हो गया हूँ, जब तक मैं पहुंचूंगा तो जो रथ है वो नीलाचल से सुंदराचल चले गया होगा, वापस भी आ गया होगा, तो मैं दर्शन कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन वो भागते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और एक बहुत सुंदर कविता की रचना करते हैं, जग बंधु हे गोसाई। आज भी 400 साल के बाद भी अगर आप किसी उड़िया या एक वहां जगन्नाथपुरी में किसी से ये भजन पूछेंगे तो आपको पूरा भजन सुना देगा, शायद पासवर्ड या अपना पाद सेवक प्रभु जी को भी याद होगा, जग बंधु हे गोसाई। तो उन्हें बहुत सुंदर कविता लिखी और फिर वो भागने लगे, दौड़ने लगे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के। लेकिन वो लेट तो हो गए थे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गई और वापस आने लगे। लेकिन भगवान जैसे भक्त भगवान का इंतजार कर रहे थे, देखना चाहते थे भगवान में किसका दर्शन करना चाहते थे, सालबेग। तो वहां पर ना एक जगह बाल गंठी नाम की, तो सब लोग रथ को हाँक रहे थे, खींच रहे थे। जगन्नाथ जी बड़े खुशी खुशी गए, बड़े जल्दी पहुंच गए, लेकिन वापसी आते समय इस जगह बाल गंठी में जाकर उन्होंने रथ को जो है रोक दिया। अब सब भक्त लोग परेशान हो गए, कोई रस्सी खींच रहा है, जितने भी लोग इकट्ठे हो गए सब रस्सी खींचने लगे, यहां तक कि राजा ने हाथियों को लगाया, हाथी के ऊपर रस्सी बांध दी और हाथी खींचने लगे, लेकिन रथ जो है वो तस से मस नहीं हुआ, रथ वहीं का वहीं हुआ। तो सब लोग के बीच में चिंतित हो गए, जगन्नाथ जी क्यों नहीं जा रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं। इतने में कुछ दिनों में सालबेग भागते भागते वहां पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, लोटपोट होने लगे और वो समझ गए कि जानबूझकर भगवान ने जो अपना रथ यहाँ रोका है। वो अपने आप को बहुत कोसने लगे और भगवान का धन्यवाद करने लगे कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दर्शन देने के लिए आप रुके, क्योंकि अगर आप मंदिर में प्रवेश कर जाते तो मुझे दर्शन प्राप्त नहीं होता। फिर जब भगवान ने जगन्नाथ जी ने सालबेग जी को देखा और सालबेग ने जगन्नाथ जी को देखा तब दोनों तुष्ट हो, फिर जो है वो रथ चलने लगा और जगन्नाथ जी वापस अपने मंदिर में आ गए। लेकिन ये बात किससे छुपनी थी, सभी को पता चल गया कि जगन्नाथ जी किसकी वेट कर रहे थे। तो सालबेग जो है वो रातों रात जो है बड़े प्रसिद्ध हो गए और राजा ने जो है वो सालबेग को बाल घंटी जगह पर जो है स्थान दिया और वो पूरा जीवन सालबेग फिर उस बाल घंटी नाम की जगह पर रहे और उन्हें शरीर भी वहीं छोड़ा और उनके शरीर छोड़ने के बाद उनकी समाधि वहां बनाई गई और जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी के राजा ने व्यवस्था की कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हर रोज सालबेग जी की समाधि में जाएगा, उनको भोग लगेगा और फिर सबको वितरित हो। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो एक यावन परिवार में जिसका जन्म हुआ, मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, लेकिन चाहे दुख के कारण सही, पीड़ा के कारण सही, वो उसको उनकी माता का एक संग अच्छा संग प्राप्त हुआ और भगवान की भक्ति उन्होंने की, तो उसका क्या परिणाम हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त बने, अनन्य भक्त बने। तो इस तरीके से भगवान क्या करते हैं कि इच्छा भी पूरी करते हैं और हमें हमारा शुद्धिकरण भी करते हैं। तो हम सबसे प्रार्थना है कि आपको जो जो आपकी लिस्ट थी जो आपने पहले लिखी होगी अपनी कॉपी में, तो वो जो है आप भगवान से मांग कर उसकी पूर्ति कर सकते हैं, है ना, तो भगवान उसकी पूरी करें। लेकिन भगवान भागवत में कहते हैं सैवै पंचम पर धर्मो यतो भक्ति रधोक्ष जय अहेतुकी अप्रतिहत यात्मा सुप्रसिद्धि। भगवान कहते हैं लेकिन वत्स, अगर आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त करनी है तो अहेतु की भक्ति करनी पड़ेगी। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की मतलब कोई हेतु नहीं होना चाहिए, वहां से हेतु रखेंगे तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ कुछ वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अहेतु की अप्रतिहता, बिना हेतु के और निरंतर मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएंगे। तो ये एक प्रभुपा जी ने कहा। और फिर आखिरी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रभुपा जी यहां पर कह रहे हैं कि ये इस श्लोक के ऊपर प्रभुपा जी ये कह रहे हैं कि कृष्णा भावनामृत कोई सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, प्रत्येतु वह यह विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। और प्रभुपा जी कहते हैं कि जो कृष्ण की संतुष्टि करता है तो वो वास्तव रूप में हर किसी को संतुष्ट कर सकता है, पूरे जगत का कल्याण कर सकता है अगर वो भक्ति करता है। यहां प्रभुपा जी ये संभाल रहे हैं कि यहां इंग्लिश में आप देखेंगे, इंग्लिश में प्रभुपा जी लिखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट अ सेक्टेरियन रिलीजियस मूवमेंट, रादर इट इज मेंट फॉर ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द वर्ल्ड। जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है ये ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड में लिप्त है, निमित्त है, ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयर एक्टिविटी। असली में वास्तव रूप में जब भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं तो पूरे जगत का उद्धार होता है। जब अपनी साधना करते हैं तो कृष्ण संतुष्ट होते हैं और कृष्ण के संतुष्ट होने से सभी जीवों के जीवन में आनंद आता है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी और बताता हूँ जो पत्री प्रभु ने हमें बताया था। हमारी गौरंग सभा क्लास थी तो वो शेयर कर रहे थे कि रशिया में जो रशियन आर्मी के जनरल थे उनकी एक बेटी थी, तो समाओ रशिया में क्या हुआ, जो उनकी बेटी थी रशियन आर्मी जनरल की वो भक्त बन गई। और जो भक्त बन गई तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की और वो कहने लगी कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में, तो ऐसा था कि किसी क्षण भी जो है या किसी दिन भी रशिया अमेरिका के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। और कोल्ड वॉर का मतलब मन मुटाव और मन ही मन जो है वो एक दूसरे के प्रति बहुत विरोध था और कभी भी जो है वो प्रकट रूप लेकर जो है वो युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता। तो बहुत इंटेंस सिचुएशन थी उस टाइम रशिया और अमेरिका के बीच में। तो एक घड़ी ऐसी आई कि वो औरत पत्नी बहू को बता रहे थे कि एक घड़ी ऐसी आई कि उस जनरल ने कमांड इशू किया कि जितने भी मिसाइल्स हैं वो अमेरिका के सबसे जो प्रमुख शहर थे उनकी तरफ लांग दिए गए, जितने भी रशियन सबमरीन्स थे वो पूरे अमेरिकन बॉर्डर को उन्होंने सर्कमवेंट कर लिया कि जब ऑर्डर आएगा तो तब वहीं से हम आक्रमण कर देंगे। पूरी रशियन आर्मी तैयार हो गई और बस रशियन प्रेसिडेंट का इंतजार था कि वो जब हामी भर देंगे तो पूरी रशियन आर्मी जो है वो अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर देगी। और सब सोल्जर तैयार थे, सबमरीन तैयार थी, मिसाइल्स तैयार थे, आर्मी अपनी बंदूकों के साथ तैयार थे कि अचानक एक दिन जनरल ने ऑर्डर दिया रिट्रीट पैक कि सब वापस आ जाइए। तो बड़ा आर्मी में बड़ा क्रोश था कि ऐसा कैसे, हमने सारी तैयारी कर ली, सब मिसाइल टांके हुए हैं, सब सबमरीन पूरे बॉर्डर को घेरे हुए हैं, हम आक्रमण करने के लिए बिल्कुल रेडी है, अब हामी भरी और हम आक्रमण करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, रिट्रीट बैक, तो क्या कारण है बताइए, कारण तो बताइए। कहते अभी कारण बता नहीं सकते, वापस आइए। तो फिर इतना हजारों किलोमीटर का रास्ता वापस आकर उन चीजों सबमरीन्स को वापस आना पड़ा। तो वो जो दिन था जब ये ऑर्डर वापस आया तो वो था 17 सितंबर 1965। तो जब वो औरत जुड़ी इस्कॉन से तो उसको पता चला कि 17 सितंबर 1965 में क्या हुआ था कि प्रभुपाद जी ने कहां कदम रखा, अमेरिका में। तो पत्री बहु ये कह रहे थे कि प्रभुपाद के प्रीचिंग एफर्ट ने इस पूरे पृथ्वी के लिए, मैनकाइंड के लिए क्या किया है ये हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। व्हाट प्रभुपाद हैज डन फॉर दिस वर्ल्ड वी कांट इवन एस्टिमेट। फिर प्रभुपाद जी कहते थे दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट विल बी रिमेंबर्ड टू हैव एंड सेव द मैनकाइंड इन इट्स डार्केस्ट आवर. ये याद किया जाएगा कि कृष्णा भावना अमृत आंदोलन ने पूरे मानव समाज का अपने सबसे डार्केस्ट आवर में जो है में इस मानव समाज को बचाया. तो जब हम लोग इस तरीके से जब हम अपनी भक्ति करते हैं और उसका प्रचार करते हैं तो ना सिर्फ हम लोग अपना उद्धार करते हैं पर जन समाज का हम उद्धार करते हैं. तो और कहने को बहुत कुछ था बट समय जो है वो 9 बज चुके हैं तो मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा. किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं. यस प्रेमांजन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.